नमाज से कबल बैतुल खला से फारिग होना ज़रूरी है। रफ़ हाजत के वक्त नमाज खड़ी हो जाए तो पहले इत्मीनान से रफ़ हाजत से फारिग होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अरकम रदी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब कोई शख्स बैतुल खला में आने का इरादा करे और इधर नमाज खड़ी हो जाए तो पहले उसे बैतुल खला से फारिग होना चाहिए। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। क्यों? इसलिए कि जब नमाज में तवज्जो इस तरफ होगी कि जिस्म में कुछ बोझ है या उससे इंसान की तवज्जो बढ़ती है तो नमाज सही तरह अदा नहीं कर सकेगा। फिर दूसरी बात यह है कि इस हालत में वुज़ू के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो बाद में इस तरह का की हालत हो तो बेहतर है कि इंसान अपने आप को पहले फारिग करे। अल्लाह ताला एक बड़ा प्यारा असूल भी सिखा रहे हैं कि जहाँ इंसान को जाना चाहिए वहीं जाना चाहिए। रफ़ हाजत के लिए पर्दे का अहतमाम ज़रूरी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ हाजत के लिए बैठने लगते तो ज़मीन के करीब पहुँच कर कपड़ा उठाते ताकि बेपर्दगी ना हो। इसे तिर्मिज़ी, अबू दाऊद और दारमी ने रिवायत किया। दूसरी रिवायत, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफ़ हाजत का इरादा फरमाते तो बस्ती से इतने दूर निकल जाते कि कोई भी आपको देख ना पाता। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। ये भी एक इंसान के महज़्ज़ब होने की अलामत है कि कोई इंसान उसको इस हालत में ना देखे, क्योंकि ये इंसान की इज्जत के ख़िलाफ़ होती है और जिस इंसान के लिए दिल में इज्जत होती है वो उसको ऐसी किसी हालत में देखता है तो बुरा महसूस होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब बहुत ज़्यादा तरक्की का शोर भी हो और लोग अपने आप को बहुत मॉडर्नाइज भी करें, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ ऐसा इस्तेमाल नहीं होता। मैंने इस चीज़ को इसलिए कहा कि मुझे जो बात पता चली किसी भी मुल्क के बारे में कि वहाँ के जो इवन हाई स्कूल्स भी होते हैं कि रेस्ट रूम के अंदर 5-6 टॉयलेट लगे होते हैं और लोग एक दूसरे के सामने फारिग होते हैं। ये स्कूलों के बारे में मुझे किसी ने बताया। फिर इसी तरह जेल के बारे में किसी ने बताया कि जब लोग किसी वजह से कैद किए जाते हैं तो वहाँ इवन जो शावर लेने की जगह है उसमें कोई पर्दा नहीं होता। अगर किसी को अपनी इज्जत बचानी है तो फिर वो कपड़े पहन के शावर लेता है। ये चीज़ें जो हैं ये इंसान की हया के ख़िलाफ़ है। इस्लाम इंसान की इज्जत की भी हिफाजत करता है, तो लिहाजा बिला वजह किसी के सामने अपनी कोई ऐसी चीज़ नहीं खोलनी चाहिए कि जिससे इंसान की फिर बेइज्जती भी हो। मिट्टी के 3 ढेलों से इस्तंजा करने के बाद पानी इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रफ़ हाजत के लिए जाओ मिट्टी के 3 ढेले साथ ले जाओ, पानी की चाय यही काफ़ी है, यानी 3 ढेलों से मुकम्मल तहारत हासिल हो जाएगी जिसके बाद नमाज पढ़नी जायज़ है। इसे अहमद, अबू दाऊद, नसाई और दारमी ने रिवायत किया। तो यही बात हम पीछे डिस्कस कर चुके। असर वुज़ू के लिए अलग अलग बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। इस्तंजा करने के बाद हाथ पाक करने के कलमा शहादत पढ़ना सुन्नत साबित नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला के लिए तशरीफ़ लाते तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी का लोटा या चमड़ की छागल कर देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तंजा करते और मिट्टी पर हाथ मलकर साफ करते, फिर आपको दूसरे बर्तन में पानी ना तो आप वजू फरमाते। इसे अबू दाऊद ने किया। यहाँ आप देखिए कि पहली बात यह है कि यहाँ वो रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत करें, दूसरी चीज़ यह है कि आपने इस्तंजा करने के बाद मट्टी हाथ मले। बात आ गई कि उस दौर साबुन नहीं थे, मट्टी से हाथ साफ। यहाँ एक राइट पॉइंट नोट कीजिए कि क्या आज के दौर में यही बेहतर है मट्टी से हाथ धोए, और क्या आज साबुन का इस्तेमाल बिदत है? बस लोग दीन के कैसे सिरे पे जाना चाहते हैं जो उनका ख्याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था बस वही हमें भी करना है, उसी तरह करना है। तो मैंने आज भी ऐसे लोगों के बारे में सुना है कि जो साबुन के इस्तेमाल को गैर शरई समझते हैं और वज़ू के लिए लोटा ही इस्तेमाल करें, चाहे के पास टैप वाटर भी हो, और बास तो फिर उस पर मिट्टी का लोटा बनाने की भी शर्त, और बास खड़े होकर वज़ू करना इसको भी पसंद नहीं करते और बैठते हैं। देखिए इन सारी चीज़ों को जो भी इशारतन तذکرہ किया गया इनके साथ एक छोटा सा इस्लाम का मिजाज समझ लीजिए कि इस्लाम में बिदत चीज़ होती है जो नहीं समझ के की जाए। अगर आज के दौर में सहूलत है, मौजूद है, साबुन अल्लाह ने दिए, खुशबू वाले भी हैं, शर्त सिर्फ ये है कि उसमें कोई हराम चीज़ ना हो, बस। तो ये अल्लाह की नेमत है। जिस रब ने मिट्टी पैदा की उसी ने तो वो साबुन भी बनाने का सामान पैदा किया, और आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि साबुन किस चीज़ से बनता है। फैट से बनता है, फैट ऑयल से बनती है। जब कुकिंग ऑयल को गर्म करते हैं, उसकी रिफाइन करते हैं, तो उसके ऊपर से जो झाग उतरती है ना, मैल, यानी ऑयल की झाग से सोप बनता है। अब ये अल्लाह ने दिया ना, क्या ये बुरी बात है? हम क्यों इस तरह के किनारे पे जाते हैं कि जहाँ पहुँच के हम अपने लिए भी मुश्किल करें और दूसरे के लिए भी? आप किसी के बड़े अच्छे साफ़ सुथरे रेस्टरूम में जाएं और आप अपने पर्स में से मिट्टी के ढेले निकालें कि जी मुझे तो मिट्टी से हाथ साफ़ करने हैं। ये कौन सा इस्लाम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत सारे काम नहीं किए थे। आप वो कभी जहाज़ पे नहीं बैठे थे तो फिर हम भी ना बैठे। आप तो कभी गाड़ी में नहीं बैठे, आप तो ट्रेन में नहीं बैठे, आपने तो बस नहीं इस्तेमाल की, तो क्या हम ना बैठे? ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इसको एक शिद्दत पे जाके जब लोग दीन समझ के करते हैं तो दुरुस्त नहीं। हाँ, मौका मौजूद हो तो इसको, इसका इनकार नहीं करना चाहिए। इसको अगर दोनों में चॉइस दी जाए तो ठीक है, जो भी है, लेकिन इन सारी बातों की बजाय अगर वो अमल किया जाए ना जो आपकी कारकर्दगी को संवारे। देखिए, बाज़ लोग इन चीज़ों में इतने उलझे रहते हैं, मैंने फील की है ये चीज़, कि जो लोग वाकई इस तरह करना चाहते हैं, पहली बात कहूँगी यहाँ कि सुन्नतों को मानना चाहिए। सुन्नत को सुन्नत समझ के अगर आप करते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होता है। लेकिन ऐसे लोग बाज़ दफ़ा अमली तौर पे सुस्त साबित हो जाते हैं। वो हर वक्त इन्हीं उलझनों में है कि ये सही चीज़ नहीं मिली, ये नहीं, फिर कभी कर भी लेंगे दूसरी तरह तो ये फील करेंगे कि मेरा वज़ू ठीक नहीं हुआ, आज मुझे नमाज में मज़ा नहीं आ रहा। तो ऐसी सारी चीज़ों की बजाय अगर प्रैक्टिकल इंसान बने और वो मकसद सामने रखे कि जो उससे हासिल होना है, तो इंशाल्लाह ताला उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हाँ, आपने मिसवाक का हुक्म दिया, आप ज़रूर कीजिए। हम में से कितने लोग हैं इस वक्त जो बात करने वालों में से भी जो नमाज के साथ इसमें मिसवाक की बात करते हैं? आपको अल्लाह ने ब्रश दिए तो क्या मिसवाक करेंगे तो ब्रश ना करें फिर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सुबह उठें, आप ब्रश कर लें, कोई हर्ज नहीं है। आप उसके साथ पेस्ट लगाएं, आपके आपको एक फ़्रेश फीलिंग आएंगी। फिर नमाज से पहले आप मिसवाक कर लीजिए। और इस तरह भी आप कर सकते हैं कि कभी, मैं तो इस तरह करती हूँ कभी, कि जैसे सुबह ही के आप उठें तो आप मिसवाक पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के तो साथ मिसवाक भी कर सकते हैं, साथ ब्रश भी, यानी आपका सांस भी खुशगवार हो सकता है। तो वक्त और माहौल की मुनासिबत से काम करना, ये दीन है। अपने आप को मसला नहीं बना देना चाहिए लोगों के लिए, और ख़ुद भी मसले में रहे, दूसरे भी रहे, और असल चीज़ से फिर तवज्जो इससे हट जाती है। रफ़े हाजत के दौरान बात करना मना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब कर रहे थे, एक आदमी का इधर से गुज़र हुआ तो आपने, इसने आपको सलाम किया, लेकिन आपने इसके सलाम का जवाब नहीं दिया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। तो इससे क्या पता चला कि हर मौके पे इंसान सलाम का जवाब नहीं दे सकता। अब कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है और दूसरा उसको सलाम करे, तो क्या वो सलाम का जवाब देने के लिए नमाज़ तोड़ेगा? तो क्या फिर यहाँ वो बात है कि जी सलाम का जवाब ना देना इस्लाम के ख़िलाफ़ है? तो बात यह कि जिसने सलाम किया उसने ठीक मौके पे किया भी है कि नहीं। हमारे लिए भी इसमें अमल की बात है कि कोई रेस्टरूम में है तो अब आप घर में हैं या बाकी भी लोग हैं तो आप घर में आते ही सलाम कर दें, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन किसी को ज़बरदस्ती आप घर में आए, और वैसे भी हुक्म है कि आप घर में आए, चाहे खाली घर है फिर भी आप सलाम करेंगे, लेकिन किसी को सुनाना और कहना आगे से मुझे जवाब दें, तो ये दुरुस्त तरीका नहीं होगा। क्यों भला? अब देखिए कि इससे एक बात पता चलती है, और वो क्या है कि मुसलमान जो भी काम करता है ना, किसी ज़रूरत से करता है। जो रेस्टरूम में जाएगा ना, वो सिर्फ़ ज़रूरत से फ़ारिग होने के लिए गया है। वो इतना लंबा बैठेगा ही नहीं कि जो शख्स आया वो आके बैठ के इंतज़ार करके भी चला गया और वो अभी अंदर ही से फ़ारिग नहीं हुआ। ठीक है, गया और आ गया। रेस्टरूम क्या है? एमरजेंसी डोर। बस आप दाखिल हुए और फ़ौरन आ गए। आप अपने दीन को चेक करें कि कितना मैं इन चीज़ों को जल्दी करती हूँ। एक बच्चे की बात मैं आपको बताती हूँ कि एक हमारे रिलेटिव्स हैं, तो उनमें से एक बच्चा था, तो हम कहीं निकल रहे थे, तो उस वक़्त वो बच्चा शावर के लिए गया। हमने कहा चलो, उसने कहा नहीं मैं शावर लूँगा। ठीक है, चले, हम चले गए। हम किसी के घर गए, उसी इलाके में था, 5-7 मिनट साथ लगे जाने में, वहाँ 15-20 मिनट, आधा घंटा से भी शायद ज़्यादा बैठे, तकरीबन 1 घंटा प्लस कुछ वक्त पे हम वापस आ गए दोबारा उसी घर में। वो किधर है बच्चा? वो अभी तक बाथरूम में। मुझे बहुत ही दुख हुआ जब वो बच्चा बाहर निकला। मैंने उसको कहा कि आप उस वक्त से बाथरूम में ही थे? उसने कहा जी। मैंने कहा आप अंदर क्या कर रहे थे? तो बस शावर ले रहा था, वट एवर। मैंने उसको सिर्फ एक जुमला कहा, मैंने कहा कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, मैं तो सिर्फ इस चीज़ से परेशान हूँ कि अगर इस वक्त के दौरान इंसान की मौत का वक्त आ जाए तो वो कहाँ मरेगा। देखिए, जहाँ हम ज़्यादा वक्त गुजारते हैं ना, इंशाल्लाह वहीं हमारी मौत आएगी। अगर आप इल्म के साथ जुड़े हुए हैं तो यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपको इसी किसी काम में मारेगा। अगर आप सफ़र ज़्यादा करते हैं तो हो सकता है सफ़र में जान चली जाए। जो काम बंदा करता है, जो बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो उम्मीद ज़्यादा है ना, ये तो अल्लाह को पता है कब मौत आनी है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो टॉयलेट में इतना इतना वक्त लगाते हैं, तो अगर फरिश्ता उस वक्त वहाँ आ जाए तो फिर इंसान तो शायद कलमा भी ना पढ़ सके। इसलिए इस कल्चर को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यहाँ मैंने देखा है कि टॉयलेट एक ही है मोस्टली घरों में, एक या दो। यूके और यूरोप में मैंने ये चीज़ फील की थी, और शुरू में तो मुझे बड़ी अजीब लगी कि कैसे लोग रहते हैं, बल्कि बीच का फ्लोर है उसमें टॉयलेट होता है और ऊपर नीचे भी फ्लोर है, लोग सेम यूज़ करते हैं। यूके में ये चीज़ मैंने देखी थी, लेकिन जिन घरों में माशाल्लाह, हम अपने आप पिछले ताल्लुक को देखें तो 5 बेडरूम का घर है तो 6 टॉयलेट है, ऐसा है ना, क्योंकि एक रेस्टरूम के आप एक ड्राइंग रूम के साथ भी होता है और एक बाहर भी होता है। तो जब इतने हैं तो फिर उसी ने देखे ना कि छुट्टी दे दी कि मेरा अपना टॉयलेट है, किसी और ने थोड़ी यूज़ करना है। जितना लोग छोटे घरों में मिलके रहते हैं उतना उनमें सब्र भी आता है, उतना उनकी ज़िंदगी दूसरों के लिए सोचने वाली ज़िंदगी होती है। जितना हम अपने इर्द गिर्द दीवारें खींचते जा रहे हैं ना इंडिविजुअलिज्म की बुनियाद पे, तो माँ बाप क्या को भी हक़ नहीं है बच्चों को बोलने का कि भाई आप ये ना करें वो करें, वो कहते हैं ठीक है। और देखा जाए तो फिर इंसान खुश भी होते हैं कि जब इतने पैसे लगा के ये चीज़ें बनी हैं तो फिर इसका इस्तेमाल भी किया जाए, लेकिन बहरहाल बात करना पसंदीदा नहीं है उस वक्त में। और जब सलाम का जवाब नहीं तो आम बातें भी नहीं। आप सारे कपड़े लेके जाइए, बाज़ लोग अंदर से आवाज़ें लगा रहे होते हैं, कोई मजबूरी भी हो, बिलफर्ज़ आप अंदर गए पानी नहीं आ रहा, अब क्या करें, दरवाज़ा नॉक करें, कुछ भी इस तरह की बात करें कि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो किसी के लिए, मतलब वहाँ ज़रूर के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए। रफ़े हाजत के बाद इस्तंजा कर लेने से तहारत हासिल हो जाती है, वुज़ू करना ज़रूरी नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, आप रफ़े हाजत के बाद तशरीफ़ लाए तो खाना लाया गया, अर्ज़ किया गया आप खाने से पहले वुज़ू नहीं फरमाएंगे? आपने इरशाद फरमाया क्या नमाज़ पढ़नी है कि वुज़ू करूं? इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। कितना प्यारा आपका अंदाज़ है, यानी सवाल करने वाले ही के सामने सवाल कर दें तो उसको अंदाज़ा होगा कि मैंने सही सवाल नहीं किया। तो इससे क्या पता चला कि अगर वज़ू नहीं है और आप रेस्टरूम से हो के आए, आपने हाथ धो लिए, तो कोई हर्ज की बात नहीं, खाना खाया जा सकता है। वज़ू के साथ रहना तो अच्छी बात है, क्योंकि वही जो बात अभी हो रही थी कि मौत आए तो वज़ू की हालत में आए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू का ख्याल नहीं रखता मगर मोमिन, यानी ईमान की अलामत है कि इंसान हर वक्त बावज़ू रहे। लेकिन शर्त नहीं है कि आपका वज़ू नहीं तो आपके नहीं, पहले मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक मैं वज़ू ना कर लूं। और आप देखिए कि आपने खुद ये अमल क्यों करके दिखाए, ताकि उम्मत कुछ ऐसे मेयार ना खुद से बना ले कि जो फिर अमल करना हर वक्त उन पर मुमकिन ना हो। ठीक है, कर ले कोई अच्छी बात है, कोई नहीं कर पाता तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। रफ़ा हाजत से तहारत हासिल करने के बाद हाथों को मिट्टी या साबुन वगैरह से अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। हज़रत मैमूना रदी अल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, इनसे रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ले जनाबत शुरू किया तो पहले अपने बाएं हाथ यानी लेफ़्ट हैंड से शर्मगाह को धोया, फिर वो हाथ दीवार पर रगड़ा, फिर इसे पानी से धोया, फिर नमाज के वुज़ू की तरह का वुज़ू किया। इसे बुखारी ने रिवायत किया। इस हदीस से क्या बात पता चलती है कि जब इंसान अपने आप को पाक करे तो साबुन ना हो तो फिर मिट्टी से साफ़ करे। दूसरी बात, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बिल्कुल ज़ाती फेल दिखता है जो आपकी बीवी की रिवायत से हम तक पहुंचा, और ये चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की तरफ जाती है कि दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें अज़वाज मुतहरात के ज़रिए से मिला। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी के कुछ ऐसे मामले होते हैं कि जो वो अपने घर वालों के सामने करता है और दूसरे लोग उस वक़्त पास नहीं होते। आज वो लोग जो अल्लाह के नबी की शादियों पे और आपकी बीवियों पे एतराज़ करते हैं, तो उनकी निगाहों से शायद ये चीज़ हटी हुई है कि आपकी बीवियाँ भी असल में उम्मत को दीन पहुँचाने का एक ज़रिया थी। फिर दूसरी बात वही है कि हाथ धोए और दीवार पर क्यों रगड़ा, क्योंकि मिट्टी की लिपाई थी तो उससे हाथ साफ़ करना चाह। इससे भी ये पता चलता है कि जहाँ भी थोड़ी सी मिट्टी हो बस उसी से किफ़ायत हो जाती है, अलग से अगर मिट्टी पास ना भी हो तो। खड़े होकर पेशाब करना मना है, अलबत्ता बीमारी या तकलीफ़ के बायस खड़े होकर पेशाब करने की रुख्सत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जो शख्स ये कहे کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق مت کرو، کیونکہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ اسے احمد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور حدیث جو تھوڑی سے مختلف لگ رہی ہے عمل میں، اس کو بھی دیکھیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ہمارا گزر کسی قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے اور پیشاب کیا، میں آپ سے الگ ہو گیا تو آپ نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تاکہ پردہ ہو جائے، چنانچہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب ظاہر تو ان دونوں احادیث میں تضاد دکھتا ہے۔ ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کبھی بھی کھڑے ہو کر ایسا کام نہیں کرتے تھے، اور دوسری روایت سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس چیز سے فارغ ہوئے۔ تو اس کی وضاحت میں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت آپ کے پاؤں میں زخم تھا اور آپ کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے آپ کھڑے ہو کر فارغ ہوئے۔ دونوں باتوں کو جب جمع کریں تو بات کیا بنتی ہے کہ کھڑے ہو کر کرنا پسندیدہ نہیں ہے، عام حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن تکلیف یا بیماری کی وجہ سے اگر کھڑے ہو کر بیٹھنے کی اگر ہمت نہ ہو یا بیٹھنا ممکن نہ ہو تو پھر اس کی رخصت موجود ہے۔ اور آف کورس جو بھی انسان اچھا عمل پائے گا تو وہ زیادہ اس کا اجر بھی ہوگا، اور جب سنت سمجھ کے کرے گا تو بھی ٹھیک ہے۔ اس میں بیماری، بڑھاپا یا سردی کے باعث برتن میں پیشاب کرنا درست ہے۔ حضرت امیمہ بنت رقیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا تھا جس میں آپ رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہاسپٹلز میں بیڈ پین ہوتا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی نہ جا سکے تو اس کی رخصت ہے۔ اب دیکھیں اسلام کتنا پریکٹیکل دین ہے، آپ کو کہیں کوئی مصنوعی تکلف دکھ رہا ہے؟ آپ کوئی کہے کہ یہ کمرے میں کیوں تھا، کیا اس سے گندگی نہیں پھیلتی؟ تو آپ دیکھیے کہ وہ تھا تو صحیح لیکن ڈھکا ہوا بھی ہو سکتا ہے، پھر فارغ جب انسان ہو جائے تو اس کو صاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے آپ کے ذہن میں ایک یہ بھی تصور آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور ہم انسانوں کے لیے ایک رول ماڈل تھے۔ اگر آپ کو کوئی ایک سپر نیچرل قسم کی چیز بنا کے پیش کیا جاتا اور جس کے ساتھ صرف تقدس تقدس کے نعرے ہوتے تو پھر آپ سے اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔